उन चारों वैम्पायर्स ने मिलकर रिवांच के खिलाफ साजिश शुरू कर दी थी ताकि रिवांच को कमजोर कर वो उसे खत्म कर सके। इसके लिए उन चारों ने बाकी वैम्पायर्स को भड़काना शुरू कर दिया। पिशाचों का नेतृत्व करते हुए भीड़ में से सबसे बुजुर्ग पिशाच जीवन बोला, देखो बेटा, जब रिवांच ने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो हम क्यों बेवजह उससे दुश्मनी मोल लें। जंगल के सारे पिशाच जानते हैं कि तुम चारों के मन में हमेशा से ही कुटिलता रही है। अरे जलते हो तुम उससे, तो अपनी कुनीतियों को हमारे जरिए तो पूरा करने की मत ही सोचो। हे जीवन ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को बल दिया। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक और पिशाच बोला, देखो दादा, भले ही वो अकेला होगा लेकिन हम सब पर भारी है। कल रात को भी तुम चारों ने मिलकर उस पर हमला किया था ना, क्या परिणाम निकला? फिर मुंह की खाकर आ गए। खुद तो आए दिन उससे जख्मी होते ही रहते हो, अब तुम क्या चाहते हो कि हम सब भी जख्मी होकर जंगल के किसी कोने में पड़े रहे? एहना चालबे। उनकी बात सुनकर रवि गुस्से में गुर्राते हुए बोला, अरे कल रात को सिर्फ हम चार थे और अगर हम सारे साथ मिल जाएं तो मिलकर उस रिवांच को जरूर हरा देंगे। जीवन ने फिर सबकी तरफ से अगवाई की, पर बेटा उनको हराना ही क्यों है, ये जंगल हम सबका घर है। अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम सब लोग मिलकर तुम चारों को इस जंगल से बाहर फेंक देंगे, फिर पता है ना क्या होगा तुम लोगों के साथ। सारे पिशाच जीवन की हाँ में हाँ मिला रहे थे तो उनकी बातें सुनकर रवि, रघु, संजय और विजय को गुस्सा आने लगा। संजय ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तो करते रहना उसकी उम्र भर गुलामी और अनंत काल तक छोटे मोटे पिशाच बनकर रहना। संजय अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी रिवांश वहां आया। उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थीं। गुस्से में उसने अपने शरीर का विशाल रूप धारण किया और संजय का गला पकड़कर उसे किसी खिलौने की भांति अपने हाथ में जकड़ लिया। और कितना गिरोगे तुम चारों, छल, कपट, लालच, ईर्ष्या सब कूट कूट कर भरे हैं तुम चारों में। तुम जब इंसान थे तब भी किसी पिशाच से कम नहीं थे। रिवांच का गुस्सा उसकी आंखों में खून बनकर उतर आया था। संजय घुटे स्वर में बोला, छोड़ो मुझे। संजय को मुसीबत में देख रवि, रघु और विजय ने एक साथ रिवांश पर हमला बोल दिया। भले ही वो एक दूसरे को पूर्णतया खत्म नहीं कर सकते थे लेकिन एक पिशाच के दिए जख्म काफी गहरे होते थे, उनका दर्द काफी असहनीय होता था। रिवांश को मुसीबत में देख जीवन ने बाकी पिशाचों को आदेश दिया, आक्रमण, और इसी के साथ सारे पिशाच झुंड में उन तीनों पर टूट पड़े। तुम चारों को ये अंतिम चेतावनी है, अगर फिर से कभी ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जीवन जोर से गुर्राया। रिवांश ने संजय को फेंकते हुए कहा, हमसे उलझकर कोई फायदा नहीं है, वो उनकी बेवकूफियों पर हंसते हुए बोला, कितने बेवकूफ हो तुम चारों, बार बार मुंह की खाने के बाद भी हमसे टकराने आ जाते हो। जीवन, युवराज, आपका हाथ जख्मी हो गया है, अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो जख्म नासूर ना हो जाए। आप फिक्र ना करें, इन कपटियों के लिए हम काफी है, आप पहले जाकर इस पर जड़ी बूटी का लेप लगाएं। जीवन की बात सुनकर रिवांश अगले ही पल हवा की तरह वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही जंगल के बाकी पिशाचों ने उन चारों को एक बड़े जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। इस पिंजरे में अक्सर उन्हीं पिशाचों को कैद किया जाता था जो बगावत पर उतर आते थे। उसके चारों तरफ जादुई सलाखें लगी हुई थीं जिन्हें छूने भर से कोई भी पिशाच पूरी तरह जख्मी हो सकता था। कुछ देर बाद आकांक्षा और जानवी लाइब्रेरी पहुंची। वो जाते ही वो दोनों सबसे पहले उस कमरे में गई जहां मोहनदास के बैठा करते थे। मोहनदास जी ने उन दोनों को देखते ही पहचान लिया, तुम दोनों फिर आ गई और यही वक्त मिलता है क्या तुम्हें आने का? वापस जाते वक्त डर नहीं लगेगा? आकांक्षा ने बात घुमाए बिना सीधे पूछा। नहीं अंकल, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अंकल, क्या आप जानते हो कि जो लड़का यहाँ से वो तीन पिशाच वाली किताबें लेकर गया था उसका खून हो चुका है? जानवी ने हड़बड़ाकर बोला। मोहनदास जी, हाँ पता है, आज सुबह ही पुलिस पूछताछ के लिए आई थी, वो तीनों किताबें अभी भी पुलिस के पास है और उन्होंने मामला निपटने पर वो किताबें वापस लाइब्रेरी में जमा करवाने का भी बोला था, लेकिन तुम दोनों इतनी घबराई हो क्यों लग रही हो? अंकल, आप पूरी बात नहीं जानते, हमने वो किताबें इंस्पेक्टर दुबे से पढ़ने के लिए मांगी थीं। उनमें से एक किताब में खून से किसी राजकुमार रिवांश का नाम लिखा हुआ था, आकांक्षा ने जवाब दिया। जानवी, क्या आप जानते हो कि राजकुमार रिवांश कौन था, कहाँ का राजकुमार था? इस दुनिया में न जाने कितने राजकुमार रिवांश होंगे, लेकिन हाँ, यहाँ लाइब्रेरी में बिलासपुर रियासत के राजा जयप्रताप सिंह के बारे में भी कुछ पुस्तकें हैं। उनके बेटे का नाम भी रिवांश प्रताप सिंह था। बिलासपुर के आसपास के गांव में भी राजकुमार रिवांश के बारे में कुछ बातें फैली हुई हैं। अब उन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जाने, मोहनदास जी ने उन्हें जवाब दिया। कौन सी बातें? आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। मोहनदास जी ने हंसकर जवाब दिया, तुम दोनों तो बिल्कुल पुलिस की तरह पूछताछ कर रही हो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें कुछ किताबें देता हूँ, उनके जरिए तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने वो किताबें बहुत पहले पढ़ी थीं इसलिए मुझे सारी बातें याद नहीं है। ओ नो, फिर से किताबें, प्लीज नहीं, वरना फिर से पूरी रात ये मुझे बैठाकर वो किताबें पढ़वाएगी, जानवी ने मुंह बनाकर कहा।
आकांक्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ तो अच्छा ही है ना, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था और आज भी बोल रही हूँ कि अगर इतना मैंने अपने सिलेबस की किताबों को पढ़ा होता तो आज कोई अच्छी नौकरी मिल गई होती, जानवी ने झुंझलाकर कहा। आकांक्षा को उसे देखकर हंसी आने लगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो तो तू अभी पढ़कर एक अच्छी सी नौकरी लग सकती है। अच्छा बच्चियों, बहस बंद करो, चलो ऊपर लाइब्रेरी में चलते हैं, वहां पर कुछ किताबें मिल जाएंगी, मोहनदास जी उठते हुए कहा। वो उन दोनों के साथ ऊपर लाइब्रेरी की किताबों वाले सेक्शन में गए। उन्होंने वहां से एक किताब उठाकर उसका शीर्षक पढ़ा, बिलासपुर और कुछ किंवदंतियां। मोहनदास जी ने वो किताब आकांक्षा को पकड़ाते हुए कहा, ये किताब बिलासपुर में फैली हुई कुछ किंवदंतियों के बारे में है जिसे एक व्यक्ति ने अपनी रिसर्च के आधार पर लिखा था, इसे जरूर पढ़ना, शायद इसमें तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। आकांक्षा ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की है। मोहनदास जी ने जवाब दिया, वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन किसी मुसीबत में मत पड़ जाना, हो सकता है कि इन किताबों में लिखी कुछ बातें सच हों और कुछ सच के पीछे जाना या उनके बारे में पता लगाना बहुत खतरनाक साबित होता है। उनकी बात सुनकर जानवी ने जवाब दिया, एग्जैक्टली अंकल, पिछले दो दिनों से मैं इसे यही समझा रही हूँ कि कुछ चीजें हमारी पहुँच से परे होती हैं। मोहनदास जी ने बुक रैक से एक और किताब निकालते हुए बोला, और ये किताब महाराजा जयप्रताप सिंह जी के राजघराने के ऊपर है, इसे भी रख लो, लेकिन मेरी बातों को भी याद रखना। जी जरूर अंकल। अच्छा अब हम चलते हैं, ये किताबें हम आपको दो दिन बाद वापस लौटा देंगे, आकांक्षा ने कहा। ठीक है, लेकिन जाते वक्त रजिस्टर में अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखवा देना। आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। वो और जानवी मोहनदास जी से वो किताबें लेकर घर पहुंची। घर आते ही आकांक्षा उस किताब के आखिरी पन्ने पर बने चित्र को देख रही थी कि उसे छूते ही उसे फिर से कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, क्रमशः